नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता वीकेंड पॉडकास्ट द इंडियन एक्सप्रेस, अखबार के साहस की पत्रकारिता करने की पूरी कहानी इस पॉडकास्ट में। रामनाथ गोयनका 3 अप्रैल 1904 को दरभंगा में जन्मे थे। कारोबार के गुर सीखने वो चेन्नई चले गए थे। उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल में डिस्पैच वेंडर का काम भी किया था। 1936 में उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआत की। वो देश की पहली संविधान सभा के सदस्य भी थे। भारत के संविधान पर उनके भी दस्तखत हैं। काम ही मनोरंजन, बाकी कोई शौक नहीं। रामनाथ गोयनका ने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए बताया था, मुझे ना तो संगीत का शौक़ है, ना फिल्मों का और ना ही किसी और तरह के मनोरंजन का। मेरा इकलौता मनोरंजन काम है। मैं हर दिन सुबह 4:30 बजे जग जाता हूँ और 5 मील वॉक करता हूँ और शाम को भी टहलता हूँ। किसी तरह का कोई नशा नहीं करता। दोस्त भी गिने चुने हैं, ज़्यादातर सहकर्मी हैं। मेरा खान पान भी शाकाहारी और बहुत सादा है। बड़ी कारें भी पसंद नहीं है। मेरे पास फीएट है जो मैं खुद चलाता हूँ। लंबी दूरी की यात्रा पर ड्राइवर भी साथ होता है। हाँ, अर्थशास्त्र पर केंद्रित किताबें मुझे पसंद हैं। उनके लिए जन्मदिन भी किसी आम दिन की ही तरह होता था। 1979 में अपने जन्मदिन यानी 3 अप्रैल पर, जब वो खुद अपनी फीएट कार चलाकर बेंगलुरु से अपने मद्रास स्थित घर के लिए निकले, तो रास्ते में वो इंटरव्यू दे रहे थे और घर पहुंचकर भी काम में लग गए थे। बेंगलुरु से मद्रास की यात्रा के बीच इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार छोटू कराड़िया को दिए एक लंबे इंटरव्यू में उन्होंने पत्रकारिता, सियासत से लेकर अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें साझा की थी। ये इंटरव्यू 31 मई 1979 के इंडिया टुडे के अंक में छपा था। तब रामनाथ गोयनका द्वारा कही गई कई बातें आज भी प्रासंगिक हैं। आज़ादी की लड़ाई के सिपाही रामनाथ गोयनका ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। जब वो छात्र थे तभी मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी से उनका संपर्क हुआ था। उन्होंने चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। साल 1942 में ट्रेन और पुल को उड़ाने में भी उनकी सक्रिय भागीदारी थी, इसीलिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। आज़ादी की लड़ाई में वो दक्षिण भारत में आंदोलन के प्रभारी रहे थे। रामनाथ गोयनका का साफ मानना था कि अखबार चलाना नेताओं के बस की बात नहीं है। इसकी वजह वो ये मानते थे कि नेता व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर सोच ही नहीं सकते, जबकि अखबार पूरे देश की चिंता करता है। उनकी राय में अखबार सिर्फ व्यापार का साधन नहीं बल्कि एक मिशन भी है, लोगों की ज़िंदगी संवारने का जरिया भी है। वो हमेशा कहा करते थे कि यदि मीडिया ने देश को प्रेरित करना छोड़ दिया तो बदलाव की बेहद कम संभावना है। वो कहते थे, मीडिया ही है जो लोगों को ये एहसास दिलाती है कि क्या क्या बदलाव किया जा सकता है और कहाँ क्या काम करना बाकी है। वो ये भी मानते थे कि अखबार मालिक के जहन में किसी भी तरह का डर होना ही नहीं चाहिए, खासकर नेताओं से तो कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने अखबार में हमेशा इसका पालन भी किया। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल और प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था तो उन्होंने ऑप एड पेज को खाली रख कर इसका कड़ा विरोध किया। उनका ये तरीका इमरजेंसी के विरोध का सबसे सशक्त तरीका माना गया। हिंदी दैनिक तेज निकालने वाले लाला देशबंधु गुप्ता की ओर से उनसे संपर्क किया गया था। उनके साथ मिलकर उन्होंने चेन्नई में अंग्रेजी अखबार शुरू किया। अखबार का नाम था द इंडियन न्यूज़ क्रॉनिकल। लाला देशबंधु गुप्ता के निधन के बाद रामनाथ गोयनका ने अंग्रेजी अखबार का नाम द इंडियन एक्सप्रेस रखा। रामनाथ गोयनका अपने अखबार को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे और वो भी अपने हाथों से। इसके लिए वो लगातार नई पहल करते रहे। उन्होंने तब के ज़माने में 2.5 करोड़ खर्च कर ऑफसेट मशीन खरीदी थी। उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस का संपादक एक विदेशी को बनाया था। इस पर सवाल उठे तो उनका साफ कहना था कि वो दुनिया के किसी कोने से अपने अखबार के लिए अच्छी प्रतिभाएं लाएंगे। उन्होंने अपने अखबार में खोजपरक रिपोर्ट यानी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की शुरुआत कराई और संकल्प लिया कि रोज़ एक ऐसी रिपोर्ट ज़रूर छपवाई जा सके। रामनाथ गोयनका ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बात करते हुए बताया था, मैंने अपने संपादकीय में कभी भी RSS का समर्थन नहीं किया है, लेकिन आलोचना भी नहीं की। मैं व्यक्तिगत रूप से RSS का समर्थन करता हूं क्योंकि RSS कार्यकर्ताओं की देशभक्ति, राष्ट्रवाद और सुव्यवस्थित कैडर मुझे अच्छा लगता है। वो लोग ये नहीं कहते कि मुसलमानों को हिंदू धर्म में परिवर्तित कर देना चाहिए। JP और नानाजी देशमुख को साथ लाए, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को साथ लेने के बारे में बताते हुए रामनाथ गोयनका ने कहा था, जब मैं इन दोनों को साथ ला रहा था तो JP ने मुझसे पूछा, रामनाथ जी आप ये क्या कर रहे हो, आप मुझे जनसंघ के साथ जुड़ने के लिए कह रहे हो। इस पर मेरा जवाब था, हम उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, अगर वो गड़बड़ करेंगे तो उनकी कान अमेठेंगे और फिर भी गलतियां जारी रखेंगे तो लात मार देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से JP को मनाया था। हालांकि अंत में उन्होंने कहा था कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, अपने मकसद के लिए मर मिटने वाले। जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस की आलोचना क्यों की वो ही जाने। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए वो जिम्मेदार हैं, तो मैंने उनसे कहा था इसकी तो पूरी जांच हो चुकी है और आरएसएस बेदाग निकला है, मुस्लिमों का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए। रामनाथ गोयनका ने मुस्लिमों पर बात करते हुए कहा था कि मुझे एक भी उदाहरण नहीं दिखता जिसमें हमने उनकी बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम उठाए हों, हम उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं। भगवान का शुक्र है कि पाकिस्तान की हालत ख़राब है, वरना जिस तरह से हम मुसलमानों के साथ व्यवहार करते हैं वो एक नई तरह की चुनौती बन सकते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है, अगले बुलेटिन तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।